आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साइंस का 12th चैप्टर है। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ना शुरू किया था कि अगर रेजिस्टेंस जो है, बहुत सारे रेजिस्टर्स अगर लगे हो कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे में क्या फर्क पड़ता है सर्किट के ऊपर, ये हम जानना शुरू कर रहे थे। और हमने आपको बताया था कि दो तरीके से रेजिस्टर्स को कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं, या तो सीरीज में लगा सकते हैं या फिर पैरेलल में लगा सकते हैं। अगर हमें रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना हो तो वो कनेक्शन किस तरीके से होता है, जैसे आप ह्यूमन चेन बना रहे हो, जैसे कि आपने मान लीजिए कि 3-4 बच्चे आप खड़े हैं और सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपनी एक चेन की फॉर्मेशन की हुई है, तो आप वहां पर एंड टू एंड हाथ पकड़ते हैं। तो इस तरीके से जो आप कनेक्शन करेंगे उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। और पैरेलल कनेक्शन तब होता है जब आप रेजिस्टर्स को दो कॉमन पॉइंट्स पे, सारे के सारे रेजिस्टर्स, मान लीजिए आपने 3 रेजिस्टर्स लिए हैं और उनको दो कॉमन पॉइंट्स पे आपने ज्वाइन किया हुआ है, एक पॉइंट उसका एक एंड हो गया और दूसरा पॉइंट उसका दूसरा एंड हो गया, तो दो पॉइंट्स पे, दो कॉमन पॉइंट्स पे आपने तीनों रेजिस्टर्स को ज्वाइन किया हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, उसे पैरेलल कनेक्शन कहेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 210 के ऊपर आपको दिखाया गया है कि सीरीज कनेक्शन के लिए फिगर 12.6 में आप देख सकते हैं कि R1, R2 और R3 को एंड टू एंड जोड़ा गया है। और आप 12.7, फिगर 12.7 में पेज नंबर 210 पर ही देख सकते हैं कि किस तरीके से रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो दो कॉमन पॉइंट्स पर, एक कॉमन पॉइंट है x, एक कॉमन पॉइंट है y, यहाँ पर रेजिस्टर्स को जोड़ा गया है। उसके बाद आगे हम लोगों ने एक्टिविटी 12.4 किया था और उससे हमने ये समझा था कि अगर हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उससे सर्किट पर क्या फर्क पड़ता है। तो उससे फर्क ये पड़ता है कि सर्किट के अंदर जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो करंट हर जगह सेम फ्लो करता है। आप R1 में चेक कर लें एक रेजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये चेक कर लें, चाहे दूसरा रेजिस्टर R2 में आप चेक कर लें या फिर R3 में आप चेक कर लें, कहीं पर भी जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो हर जगह सेम होगा। तो सीरीज कनेक्शन अगर हम करते हैं तो उसमें करंट जो फ्लो करती है सर्किट के अंदर वो हर जगह सेम होती है। तो ये बात तो हो गई करंट के बारे में। उसके बाद हम लोग जानना चाहते थे कि पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम क्या कह सकते हैं। अगर हमने सीरीज कनेक्शन किया हुआ है अलग अलग रजिस्टर्स का, तो उस टाइम पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस और पूरे सर्किट में क्या होता है। तो हमने ये देखा था कि सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा आता है वो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम प्लस R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम प्लस R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम बात करें कि सर्किट के पूरी की पूरी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे अगर हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करें और R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे V3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर आपसे कहा जाए कि रेजिस्टर्स को, कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया है, तो आप उनसे दो बात समझ सकते हैं। पहली तो ये कि पूरी की पूरी सर्किट के अंदर हर जगह करंट जो फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू सेम है। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरी सर्किट के अंदर वो रेजिस्टर्स के अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के इक्वल होगा। तो अगर आप लोगों को इंडिविजुअली अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप बता सकते हैं कि सर्किट के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। आप क्या करेंगे, आप सभी के रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उनको आप ऐड कर देंगे, ऐड करने से जो वैल्यू आएगी वो आप कहेंगे कि वो सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे और आज सीखेंगे कि सीरीज में अगर हमने डिफरेंट रेजिस्टर्स लगाए हैं तो हमें जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का वैल्यू पता लगाना होता है उसके लिए हमें कैसे पता लगाना होता है। तो लास्ट क्लास से आप लोगों को ये पता चल गया था कि कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो पूरी सर्किट में होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके एडिशन के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 211 पर जो इक्वेशन 12.11 है, इसे देखिए, कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपको पता है कि पूरी सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या है, उसे हम सेम वैल्यू, हमें पता है कि वो सेम वैल्यू होती है। सपोज करिए कि कैपिटल I करंट फ्लो कर रही है पूरी की पूरी सर्किट के अक्रॉस, तो यही कैपिटल I करंट जो फ्लो कर रही होगी ये R1 में भी फ्लो कर रही होगी, R2 में भी फ्लो कर रही होगी, R3 में भी फ्लो कर रही होगी और पूरी सर्किट में भी आई ही फ्लो कर रही होगी, कैपिटल आई करंट ही फ्लो कर रही होगी। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कैपिटल वी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सर्किट का है, तो उसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करना चाहते हैं, कैपिटल आई जो है वो तो करंट है, सर्किट में भी सेम ही करंट फ्लो कर रही है, तो हम कैसे लिखेंगे, वी कैपिटल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता लगाना चाहते हैं, जो हमने अलग अलग रेजिस्टेंस लगा रखे हैं उसका कॉम्बिनेशन का वैल्यू कैसे पता लगाना है इसको देखना चाहते हैं। तो पूरे सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो कैपिटल वी होगा, और पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो तो हर जगह सेम है तो वो कैपिटल आई होगा। तो और उसके बाद हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंस का, अलग अलग आपने तीन रेजिस्टर्स यूज किए हैं इस सर्किट में, तो इसका कॉम्बिनेशन आप जानना चाहते हैं, तो उसको मान लीजिए कि वो आर इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो आप लिखेंगे कैपिटल वी इज इक्वल टू कैपिटल आई इंटू आर इक्विवेलेंट, उसके आगे वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरीके से आपने लिखा था। तो अब V1 जो है उसको आप कैसे लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि V1 क्या हुआ, अगर हम ओम्स लॉ को फॉलो करें तो उससे क्या होता है कि करंट जो फ्लो कर रहा है रेजिस्टर के अक्रॉस इनटू उसका रेजिस्टेंस, वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू IR1, कैपिटल IR1। सिमिलरली V2 आप लिखेंगे V2 इज इक्वल टू कैपिटल IR2, उसके बाद V3 आप लिखेंगे कैपिटल IR3। तो यहाँ पर आपने ज्यादा कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ जो ओम्स लॉ पढ़ा है उसका यहाँ पर एप्लीकेशन किया है। तो आपका पूरा इक्वेशन कैसे बन गया, आई कैपिटल आई इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आगे क्या करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड कैपिटल आई है, कॉमन लेकर के उसे कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर आप लोगों को सीरीज के अंदर, सीरीज कनेक्शन के अंदर अलग अलग रेजिस्टर्स दिए हैं, उनकी अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आपको कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस अगर बताना हो तो उसकी वैल्यू आप कैसे पता लगाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके आप सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस पता लगाते हैं। तो उसके बाद आगे जो आपने ये पढ़ लिया है, यहाँ तक आपने जो पढ़ लिया है कि V जो होता है ओम्स लॉ अप्लाई करने पर आप लोग V इज इक्वल टू IR लिखेंगे, तो आपने सर्किट के अंदर भी ओम्स लॉ अप्लाई किया है और इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी ओम्स लॉ अप्लाई किया है। तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिला है कि आपको अगर सीरीज में कुछ रेजिस्टर्स दिए हैं तो उसके लिए अगर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आपको पता लगाना हो तो आपको सभी रेजिस्टेंसेस का सम करना होता है। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है एग्जांपल 12.7, इसे भी देख लेते हैं, पेज नंबर 212 पर है। इसमें बोला है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट। ए पार्ट में बोला है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बी पार्ट में बोला है द करंट थ्रू द सर्किट एंड सी पार्ट में बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। और आप लोगों को डायग्राम दिया गया है, सर्किट डायग्राम, जिसमें आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक लैंप को और कंडक्टर को दोनों को सीरीज में लगाया गया है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं पेज नंबर 212 पर फिगर 12.9, इसमें जो आपको सर्किट डायग्राम दिया है इसमें इलेक्ट्रिक लैंप को और कंडक्टर को सीरीज कनेक्शन में जोड़ा गया है। और सीरीज कनेक्शन हम कब कहते हैं, जब हम रेजिस्टर्स को एंड टू एंड जोड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड टू एंड जोड़ा गया है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। सबसे पहला इसमें पूछा है आपको टोटल रेजिस्टेंस बताना है सर्किट का, और आपने अभी अभी पढ़ा है कि अगर आप सीरीज में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं, कितने भी रेजिस्टर्स को आप जोड़िए सीरीज में, और आपको बोला जाए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है उस सर्किट के अंदर, या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, या फिर कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस क्या है, इनमें से कुछ भी आपको बोले, तो इसका मीनिंग ये है कि आपसे पूछना चाह रहे हैं कि पूरा कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगा। तो उसके लिए आपको सीरीज में अगर रेजिस्टर्स दिए हों कुछ और उनकी अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आपको सिंपली एडिशन करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया, आर वन की वैल्यू दिया 20 ओम, आर टू की वैल्यू दिया 4 ओम, इनको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू 24 ओम। तो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कहें या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहें या फिर आपसे कहें कि टोटल रेजिस्टेंस क्या है सर्किट में, तो आप तीनों ही केसेस में 24 ओम लिख देंगे। उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर बी पार्ट में आपसे बोला कि करंट थ्रू द सर्किट क्या है। तो देखो आपको यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर्किट के अंदर वो बताया हुआ है 6 ओम, और आप लोगों को टोटल रेजिस्टेंस पता है 24 ओम, और आपसे पूछा है कि सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे वी इज इक्वल टू आई आर, वी की वैल्यू आपको 6 वोल्ट पता है और आर की वैल्यू आपको 24 ओम पता है, आपको आई पता लगानी है, तो आप क्या करेंगे वी बाय आर इज इक्वल टू आई, और वी की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है 24, तो 6 बाय 24 कितना हो गया 1/4 हो गया, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एम्पियर। उसके बाद सी पार्ट में आपसे बोला है कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना है इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस भी और कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, दोनों के ही अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। सीरीज कनेक्शन में करंट तो सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होते हैं, तो जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी 1/4 एम्पियर करंट तो फ्लो करेगा लेकिन उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू अलग होगी। सिमिलरली जो आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप है तो लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग होगा, और आपके कंडक्टर जो है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन करंट दोनों में सेम ही वैल्यू का फ्लो कर रहा है, और वो कितना फ्लो कर रहा है 1/4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो आपके पास करंट की वैल्यू है, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंडिविजुअली ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस और इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस, तो हमें दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हम 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हम कैसे लिखेंगे वी इज इक्वल टू आई आर, वी हमें पता लगाना है, आई हमें पता है, आर हमें पता है, आई की वैल्यू है 1/4 और आर की वैल्यू है 4, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के लिए, तो हम लिखेंगे वी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो जो 4 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 वोल्ट। सिमिलरली हम लोग अब इलेक्ट्रिक लैंप जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20 ओम इसके अक्रॉस भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, आई की वैल्यू है 1/4, आर की वैल्यू है 20 ओम, तो 20/4 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे जो 20 ओम का इलेक्ट्रिक लैंप है इसके अक्रॉस, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको अगर सीरीज में कुछ रेजिस्टर्स लगाते हैं उनकी अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू है तो बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, हम बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि आपने मान लीजिए 3 डिफरेंट लगाए हैं रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू है, तो या तो आप 3 अलग अलग रेजिस्टर्स की वैल्यू यूज करके आप एक कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस बनाएंगे, या फिर आप एक अलग रेजिस्टेंस यूज करें जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू तीनों रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन के बराबर हो, और उस कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जो है उनके कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम क्या पता लगाना चाहते हैं कि हमने जो अलग अलग रेजिस्टर्स लगाए हैं उसका कॉम्बिनेशन अगर हम कर देते हैं तो कॉम्बिनेशन करने के बाद में कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ेगा ताकि हमें सेम ही इफेक्ट दिखाई दे जो हमने अलग अलग रेजिस्टर्स लगा करके इफेक्ट का हमने इवैल्यूएशन किया है। तो कंबाइंड इफेक्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो कितने वैल्यू का हमें कॉम्बिनेशन जो है हमने रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन देख लिया तो कॉम्बिनेशन से हमें पता लग गया कि कितने वैल्यू का रेजिस्टर हमें लगाना होगा ताकि हमें जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिला है पूरे के पूरे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वही का वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा अगर हम रजिस्टर लगाते हैं, तीनों रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर का कोई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस के सम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस उस तीनों रेजिस्टेंस के सम के बराबर वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। जैसे अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन जो हमने किया यहाँ पर एग्जांपल 12.7 हमने किया, इसमें हम देख रहे हैं कि दो रेजिस्टेंस आपने लगा रखे हैं, एक रेजिस्टेंस आपने लगाया है 20 ओम का, एक आपने 4 ओम का लगाया, इनका कंबाइंड जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है वो 24 ओम का आ रहा है। तो या तो आप 20+4 ओम इस तरीके से अलग अलग दोनों रेजिस्टेंस लगाइए और जोड़ करके जो उसका इफेक्ट आएगा, या तो आप क्या करिए कि आप सीधा एक 24 ओम का ही रेजिस्टेंस लगा दीजिए। तो आप बेसिकली क्या पता लगाना चाहते हैं, आप ये पता लगाना चाहते हैं कि हम अलग अलग 20 ओम और 4 ओम लगा रहे हैं तो हम कंबाइंड कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं कि हमें सेम जो वैल्यूज मिल रही है पोटेंशियल डिफरेंस की, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वही सेम वैल्यू हम लोगों को दूसरा वाला रेजिस्टेंस लगाने पर भी मिले। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 24 ओम का अगर आप रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसके अक्रॉस भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वही मिलेगा जो आप लोगों को 20 ओम के अक्रॉस और 4 ओम के अक्रॉस जो इनका टोटल मिला करके मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, वही आप लोगों को 24 ओम के अक्रॉस भी मिल जाएगा। तो आप बेसिकली एक ऐसी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगाना चाहते हैं जिसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले दोनों रेजिस्टेंस के इंडिविजुअली पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर का आ जाए। इसके बाद यहाँ पर और भी क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 213 पर, दो क्वेश्चंस और हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रेजिस्टर एंड 8 ओम रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम बनाना है जिसके अंदर आपने 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं सीरीज में, 5 ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का। तो 3 रेजिस्टेंसेस आपने लगाए हुए हैं, एक 5 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 ओम का। साथ में आपने एक बैटरी भी लगाई हुई है जिसमें 3 बैटरी, तीनों बैटरी की 2-2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो जाएगी, 2 × 3, क्योंकि 3 आपने सेल लिए हुए हैं और 2 वोल्ट ईच है, हर एक जो सेल है उसका 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 × 3, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 6 वोल्ट। आगे आपको इसमें सिर्फ सर्किट डायग्राम ही शो करने को कहा है तो वो आप बना सकते हैं, आप सर्किट डायग्राम बनाइए जिसमें आपने तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना है और उनके कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से जोड़ना है जिसकी वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 6 वोल्ट। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम आप लोगों को बनाना आ गया होगा, रेजिस्टर्स को कैसे शो करते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा, तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू आपको अलग अलग बताई हुई है, रेजिस्टेंस की क्या क्या वैल्यू है, और आपको आना चाहिए सर्किट डायग्राम बनाना, शो करना, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो पेज नंबर 212 पर जो डायग्राम दिया है उससे हेल्प ले सकते हो और आपको यहाँ पर सर्किट डायग्राम जो है वो बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्ट मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 में सर्किट डायग्राम बनाया था उसको रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इस बार एमीटर जोड़ देना है। आप पेज नंबर 212 पर देख सकते हैं जो सर्किट डायग्राम बनाया उसमें एक एमीटर जोड़ा गया है, तो इसी तरीके से आपको एक एमीटर जोड़ देना है। तो एमीटर क्या करेगा, वो रीडिंग शो करके देगा जब आप लोग करंट को फ्लो कराएंगे सर्किट में। इसके साथ में आप ये भी चाहते हैं कि जो आपने 12 ओम का रेजिस्टर लगाया हुआ है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसकी रीडिंग आप चेक करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो 12 ओम का आपने रेजिस्टर लगाया हुआ है सीरीज में बाकी के रेजिस्टर्स के साथ में, 8 ओम और 5 ओम के रेजिस्टर्स के साथ में, तो आप 12 ओम के अक्रॉस, केवल 12 ओम के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी जोड़ देंगे जो आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 211 पर आ जाओ और फिगर 12.8 देखो। इसमें आप लोगों ने तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने के लिए वोल्ट मीटर को जोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक ही रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है उसे जोड़ना है क्योंकि आप एक ही रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको पोटेंशियल डिफरेंस जब पता लगाना होता है रेजिस्टर का, तो आपको रेजिस्टर के एंड पर एक वोल्ट मीटर जोड़ना होता है, उसके एंड पॉइंट्स पर आपको वोल्ट मीटर जोड़ना होता है, जैसे पेज नंबर 211 पर फिगर 12.8 में शो किया है, ऐसे ही आपको शो करना है सर्किट डायग्राम बनाते वक्त। उसके बाद जो रीडिंग्स आएगी उसके बारे में पूछा है, तो बेसिकली आपसे पूछा है कि टोटल करंट की वैल्यू क्या है जो सर्किट में फ्लो कर रही है और 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। तो करंट की वैल्यू पता लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टर्स जो है इसके कंबाइंड इफेक्ट को फाइंड आउट करिए, यानी कि आप 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 12 प्लस 8 20 प्लस 5 25, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 ओम हो गया। तो आपको आपको पता है कि पूरी जो सीरीज कनेक्शन हुई है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 25 ओम आ रहा है। और आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है जो सर्किट के अंदर है वो कितनी है, वो है 6 वोल्ट, क्योंकि आपने तीन सेल यूज किए हैं और एक सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है, तो 2 × 3 हो जाएगा, तो 6 वोल्ट का आपने क्या किया है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस यूज किया हुआ है। तो टोटल सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 25 ओम। तो आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे V by R इज इक्वल टू I, और आपको V की वैल्यू पता है 6 वोल्ट और R की वैल्यू पता है 25 ओम, तो 6/25 इज इक्वल टू I, तो 6/25 एम्पियर इज इक्वल टू I, आपकी करंट की वैल्यू कितनी है 6/25। उसके बाद आपसे ये भी पूछा है कि जो 12 ओम का रेजिस्टर है आपका उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को पता लगाने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, और I तो हर जगह सेम होगा, I की वैल्यू कितनी है ये 6/25 एम्पियर, और आपके आपको उसके बाद क्या करना है, इंटू R करना है। R किसका लेना होता है आपको, जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाना चाहते हैं उसका रेजिस्टेंस आप लेंगे, तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर। अगर आप किसी पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके अक्रॉस क्या करंट है, उसका रेजिस्टर क्या है ये पता लगाइए, और आप लिखिए V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह आप लिखेंगे 6/25, आर की जगह लिखेंगे 12 ओम, क्योंकि हम 12 ओम के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू 6/25 इंटू 12, फाइनल आंसर हो जाएगा 72/25 वोल्ट। तो ये तो बात हो गई सीरीज कनेक्शन की, अब अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 12.6। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आप लोगों को तीन रेजिस्टर्स यूज करने हैं, R1 R2 R3, और इसको आप देख सकते हैं पेज नंबर 213 पर फिगर 12.10 जो आपको दिया है सर्किट डायग्राम, इसमें आप देख पा रहे हैं कि पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई दो ही पॉइंट्स पर आपने तीन रेजिस्टर्स को जोड़ा हुआ है। तो जब भी आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो आपको दो कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं जहां पर आपने सारे के सारे रेजिस्टर्स को जोड़ा होता है, तीन हो चार हो पांच हो, लेकिन पैरेलल कनेक्शन करते वक्त आपको सिर्फ दो ही कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे। सीरीज कनेक्शन में आपको कॉमन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको किस तरीके से मिलते हैं कि दो रेजिस्टर्स के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, फिर नेक्स्ट टू रेजिस्टर्स के बीच में कॉमन पॉइंट है, ऐसा कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता सीरीज में जहां सभी के सभी रेजिस्टर्स जुड़े हों, लेकिन पैरेलल में ऐसा होता है। तो पैरेलल में आपने क्या करना है, आपको दो कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर सभी रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप तीन रेजिस्टर्स लेंगे R1 R2 R3 और इनको इनके जो एंड वायर के जो एंड्स होते हैं रेजिस्टर्स के भी दो एंड्स होंगे, तो तीनों रेजिस्टर्स के दोनों एंड्स को आपने कॉमन पॉइंट्स पे कॉमन पॉइंट एक्स और कॉमन पॉइंट वाई इस तरीके से आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में इनके कॉमन पॉइंट्स को वायर से जोड़ देना है, फिर आपको एक बैटरी से जोड़ देना है और की से जोड़ करके फिर अमीटर से जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको जैसे यहाँ पे सर्किट डायग्राम शो किया गया है पेज नंबर 213 पर फिगर 12.10, तो ऐसा देख देख करके आपको भी एक सर्किट रियल में बनाना है। और यहाँ पर जिस तरीके से वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, जो कॉमन पॉइंट एक्स और कॉमन पॉइंट वाई है, यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर भी जोड़ा गया कॉमन पॉइंट एक्स पर और कॉमन पॉइंट वाई पर, यहाँ पर आपने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, साथ में सर्किट के अंदर एक अमीटर भी जोड़ा गया करंट की वैल्यू पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जो वोल्ट मीटर जोड़ा है वो कॉमन एक्स वाई और जो कॉमन पॉइंट है कॉमन पॉइंट एक्स और कॉमन पॉइंट वाई यहाँ पर आपने जोड़ा है, तो आप बेसिकली R1 R2 R3 के कंबाइंड जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसका पता लगाना चाहते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि R1 R2 R3 के कंबाइंड जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है उसकी मान लीजिए कैपिटल V वैल्यू है, और यही सेम वैल्यू आप लोगों को वो भी वहां पर भी दिखती है जहां पर आपने बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को R1 R2 R3 के कंबाइंड जो इफेक्ट है उस वहां पर भी आपको दिख रहा है। कॉमन पॉइंट एक्स और कॉमन पॉइंट वाई जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस कॉमन पॉइंट एक्स और कॉमन पॉइंट वाई के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का भी है, तो इससे आपको ये पता लगता है। अब क्योंकि अपने रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा हुआ है, तो यहाँ पर इनके कंबाइंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इनके कंबाइंड इफेक्ट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो मान लीजिए कैपिटल वी है, वही बैटरी का भी पोटेंशियल डिफरेंस है और वही इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल के कॉम्बिनेशन के केस में सेम होता है, हर जगह सेम होता है। तो आर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आर टू के अक्रॉस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस आर थ्री के अक्रॉस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन पॉइंट एक्स और कॉमन पॉइंट वाई के अक्रॉस है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस भी है। तो यहाँ पर हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम देखने को मिलता है, अगर आपने पैरेलल में कनेक्शन किया हो तो। कैपिटल वी आपने लिया था, मान के चल रहे थे हम कि कैपिटल वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कॉमन पॉइंट वाई एंड कॉमन पॉइंट एक्स, दो टर्मिनल्स हमने लिए हैं, एक कॉमन पॉइंट एक्स और एक कॉमन पॉइंट वाई, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करें, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस आर वन के अक्रॉस है, आर टू के अक्रॉस है, आर थ्री के अक्रॉस है और बैटरी के अक्रॉस भी है। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं इस बात को, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आर वन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उसे मेजर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आर वन के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है उसे लगाएंगे पहले केस में, फिर दूसरे केस में आर टू के अक्रॉस लगा करके देख लेंगे, फिर तीसरे केस में आर थ्री के अक्रॉस लगा करके देख लेंगे। पेज नंबर 214 पर आपको फिगर 12.11 में दिखाया भी गया है कि आपने किस तरीके से आर वन के अक्रॉस अपना वोल्ट मीटर है उसे लगाया हुआ है, ताकि आपको आर वन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाए। आप चेक करेंगे तो आपको यही पता लगेगा कि R1, R2, R3 तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस आपके सर्किट का भी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर करंट की वैल्यू अलग अलग होती है। R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है, R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू अलग आएगी, R2 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू अलग आएगी, और R3 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू अलग आएगी, और इंडिविजुअली जो करंट्स आ रहे हैं उनका सम करने के बाद आपको सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो हम यहाँ पर चेक भी करना चाहते हैं कि R1 के थ्रू कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि R1 की जो एंड पॉइंट है उससे आपको अमीटर जोड़ देना है, R1 के साथ सीरीज में अमीटर को जोड़ देंगे, तो उससे आपको R1 के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है उसको सपोज हमने I1 बोल दिया, तो I1 करंट फ्लो कर रही है R1 के थ्रू, R2 के थ्रू I2 करंट फ्लो कर रही है, I3 जो फ्लो कर रही है करंट वो R3 के थ्रू फ्लो कर रही है, तो R1 के थ्रू करंट फ्लो कर रही है I1, R2 के थ्रू फ्लो कर रही है I2, R3 के थ्रू फ्लो कर रही है I3, और टोटल करंट अगर आप पता लगाना चाहें कि सर्किट में कितनी फ्लो कर रही है, तो आप लिखेंगे जो टोटल करंट फ्लो कर रही है सर्किट के अंदर वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3 के, तो सम के बराबर होती है, एडिशन के बराबर होती है सर्किट के अंदर करंट। अगर आप पैरेलल में पता लगाना चाहते हैं तो आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 करना होगा। अब जैसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था वैसे ही हम यहाँ पर पैरेलल में भी करेंगे, I की जगह हम V बाय R लिखेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करके I की जगह I इज इक्वल टू V बाय R लिखेंगे। तो आपने लिखा है सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसे सपोज कैपिटल I से रिप्रेजेंट करें, तो हम लिखेंगे कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल V बाय R इक्विवेलेंट, या फिर R जो कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस आएगा वो, तो आपको कैसे लिखना है कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R इक्विवेलेंट। सिमिलरली I1 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R3। तो आपने क्या क्या लिखा, आपने लिखा कैपिटल I इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R इक्विवेलेंट, और I1 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R3। साथ में आपको इक्वेशन मिली हुई है कैपिटल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वैल्यूज पुट करने के बाद में आप लिखेंगे कैपिटल V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन R1 प्लस कैपिटल V अपॉन R2 प्लस कैपिटल V अपॉन R3। कॉमन V कॉमन लेंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरीके से आप लोगों को पैरेलल कनेक्शन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए 1/ में सब कुछ लिखना होता है. 1/R eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. पैरेलल कनेक्शन के अंदर जो रेजिस्टेंसेस दिए होंगे उसका पहले रेसिप्रोकल करोगे, उसके बाद उनको सम करोगे तो वो 1/R eq के इक्वल आएगा. उसके बाद आप इसको पुट करके, फॉर्मूले में पुट करके आप वैल्यू का पता लगा सकते हैं. इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन में पूछा गया पेज नंबर 214 में, एग्जांपल 12.8. इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली, व्हिच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड टोटल सर्किट रेजिस्टेंस. तो यहाँ पर आपको क्या पता लगाना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर. तो करंट का पता लगाने के लिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो पता ही है, क्योंकि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, अगर पैरेलल में जोड़ा गया है रेजिस्टेंस को, तो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है. तो यहाँ पर जो 12 वोल्ट का आपने बैटरी लगाई, यही 12 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा फॉर ईच रेजिस्टर्स. तो आप लोगों को हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 12 वोल्ट लेना है. उसके बाद नेक्स्ट आपको हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट का पता लगाना है, तो आप ओम्स लॉ को अप्लाई करो. आप लिखो V = IR. आपको V पता है 12, आपको R पता है जो आप लोगों को इंडिविजुअल रेजिस्टर्स दिए हुए हैं उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है. तो मान लो आप R1 के अक्रॉस करंट का पता लगाना चाहते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, V = IR लिखेंगे, V की जगह 12, R की जगह 5 ओम, उसके बाद I1 आपको पता लग जाएगा. तो I1 की कितनी वैल्यू आएगी, I1 की वैल्यू आएगी 12/5 एम्पियर. तो सबसे पहले आपने I1 पता लगा लिया 12/5 एम्पियर. सिमिलरली नेक्स्ट आपको 10 ओम के अक्रॉस करंट पता लगाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, 12/10 एम्पियर. ये हो जाएगा 10 ओम के अक्रॉस का करंट. सिमिलरली 30 ओम के अक्रॉस का करंट हो जाएगा 12/30 एम्पियर. तो इस तरीके से इंडिविजुअल करंट्स की वैल्यू पता लग गई. अब हमें पूछा है टोटल करंट इन द सर्किट क्या होगा. तो उसके लिए हमें I1 + I2 + I3 करना होगा. I1 कितना है, I1 है 12/5, सिमिलरली I2 है 12/10 और हमारा I3 है 12/30. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप LCM ले सकते हैं. सबसे पहले तो 12 को कॉमन लिखिए, 12 × 1/5 + 1/10 + 1/30. अब 30 LCM ले लेते हैं, तो हमें क्या करना होगा, 5 को भी 30 बनाना पड़ेगा, 10 को भी 30 बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करने का, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, 1/5 की जगह लिखेंगे, हम लिखेंगे 6/30. सिमिलरली हम 10 को भी 30 बनाना चाहते हैं, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3/30 हो जाएगा. और 1/30 में तो 30 है ही, तो आपने क्या लिखा, 6 + 3 + 1/30 × 12. और सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 12 × 6 + 3 + 1 कितना हुआ, 10 हो गया. तो 12 × 10/30, 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो आप लिखेंगे 12/3 = 4. तो टोटल करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर आ गया. तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट आपसे सी पार्ट में पूछा कि आपको बताना है टोटल रेजिस्टेंस क्या है. तो टोटल रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/R eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे 1/R eq = 1/5 + 1/10 + 1/30. अब आपको LCM 30 लेना है, तो आप ऊपर नीचे 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6/30 हो जाएगा. 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3/30 हो जाएगा, प्लस 1/30. तो आपने लिखा 1/R eq = 6/30 + 3/30 + 1/30. उसको और सॉल्व किया तो आपने लिखा 1/R eq = 10/30. और सॉल्व किया तो आपने लिखा 1/R eq = 1/3. दिस इम्प्लाइज R eq = 3 ओम, क्योंकि 1/R eq = 1/3 आ रहा है, तो R eq = 3 ओम. तो आपकी जो टोटल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंबाइंड रेजिस्टेंस आया, वो कितना आया, वो आया 3 ओम. इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है. उसके बाद आप एग्जांपल 12.9 देखो यहाँ पर. तो एग्जांपल 12.9 में बोला है, इफ इन फिगर 12.12 R1 = 10 ओम, R2 = 40 ओम, R3 = 30 ओम, R420 ohm, R560 ohm and a 12 volt battery is connected to the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit and total current flowing in the circuit. आप देख सकते हैं पेज नंबर 215 पर आपको फिगर 12.12 में शो किया गया है एक सर्किट डायग्राम जिसमें आपने R1, R2, R3, R4, R5 पांच रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं और जो लगाने का तरीका है वो आप लोगों को फिगर 12.12 में शो किया गया है। अब आप लोगों को सर्किट डायग्राम रीड करना आना चाहिए। मैं आप लोगों को यहाँ पर हेल्प कर सकती हूँ, आपको एग्जाम में खुद जज करना होगा कि आपने किस तरीके से जो कॉम्बिनेशन लगाया है वो किस तरीके का लगाया है। यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, R1 और R2 पैरेलल में है, आपस में पैरेलल में है, तो इनका कुछ कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा। अब यहाँ पर कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगा कहने का मीनिंग होता है आप क्या करेंगे, R1 R2 आपने अलग अलग रेजिस्टर्स लिए हैं, इसके बजाय आप एक सिंगल रेजिस्टर ले लेते इसी आपके सर्किट के अंदर तो वो सेम इफेक्ट दिखाता R1 R2 के कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, R1 R2 को हटा करके एक सिंगल रेजिस्टर सीरीज आपके सर्किट के अंदर लगा रहे हैं। सिमिलरली R3 R4 R5 ये तीनों भी आपस में पैरेलल हैं, तो आप ऐसा कर रहे हैं कि आप इसका कंबाइंड इफेक्ट पता लगा रहे हैं। तो कंबाइंड इफेक्ट पता लगाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, R3 R4 R5 की जगह एक सिंगल रेजिस्टर लगा देने हैं सर्किट के अंदर। अब सिंगल रेजिस्टर आपने R1 R2 की जगह लगा दिया, एक सिंगल रेजिस्टर आपने R3 R4 R5 की जगह लगा दिया, तो दो सिंगल रेजिस्टर्स हो गए, एक तो R1 R2 की जगह और एक R3 R4 R5 की जगह, तो यहाँ पर दो सिंगल रेजिस्टर्स हो गए। तो आप सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे, तो रीड्रॉ करने के बाद में आपको कैसा दिखेगा सर्किट डायग्राम, आपको ऐसा अपीयर होगा कि आपने दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको जज करना आना चाहिए कि आपने पहले पैरेलल में लगाए हुए थे R1 R2 और R3 R4 R5 को भी पैरेलल में लगाया हुआ था आपस में, उसके बाद में आपने जब आगे फर्दर इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिला कि आपने R1 R2 की जगह एक रेजिस्टर लगा दिया है, R3 R4 R5 की जगह एक रेजिस्टर लगा दिया है, जिससे सर्किट ऐसा अपीयर हो रहा है कि हमने एक रेजिस्टर R1 R2 की जगह लगाने के बाद और एक रेजिस्टर R3 R4 R5 के लगाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि सर्किट के अंदर दो रेजिस्टर्स लगाए गए हैं और वो दोनों आपस में सीरीज में लगाए गए हैं। अगर आप ये सब बातें नहीं समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि आपने पहले पैरेलल में लगाई है, उसके बाद पैरेलल कनेक्शन को सॉल्व करने के बाद में आपको सीरीज कनेक्शन मिल रहा है फर्दर, तो आपको यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया। तो टोटल रेजिस्टेंस पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले R1 R2 को हमने पैरेलल में लगाया, R3 R4 R5 को पैरेलल में लगाया, लेकिन बाद में हम लोगों को क्या मिल रहा है, हम लोगों को एक सीरीज कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसमें हमने एक रजिस्टर लगाया हुआ है और एक दूसरा रजिस्टर लगाया हुआ है जो कि आपस में सीरीज में है। तो ये तो बात हो गई समझने की। उसके बाद आप क्या करें, आप अब सॉल्व करना शुरू करें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, R1 R2 ये जो लगाए हैं पैरेलल में, तो इसकी जगह हम एक रजिस्टर लगाना चाहते हैं, तो हम इसका कॉम्बिनेशन पता लगाना चाहते हैं, इसका इक्वलेंट रजिस्टेंस पता लगाना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे 1/R eq = 1/10 + 1/40, क्योंकि R1 की वैल्यू है 10 ओम और R2 की वैल्यू है 40 ओम। तो आपको क्या लेना है, LCM लेना है आपको 40, तो 10 की जगह आपको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा, 1/R eq = 4/40 + 1/40। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/R eq = 5/40, और सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/R eq = 1/8, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट केस में R1 R2 का जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, 8 ओम आएगा। इसे मान लो आपने लिखा है R-, तो R- आपने R1 R2 का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसका वैल्यू है 8 ओम। सिमिलरली आपको R3 R4 और R5 के जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, 1/R eq = 1/30 + 1/20 + 1/60, LCM ले लेंगे 60, तो आपको 60 बनाना है, 30 का 60 बनाने के लिए आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 का 60 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 का तो 60 है ही। तो आप लिखेंगे 1/R eq = 2/60 + 3/60 + 1/60। आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे 1/R eq = 6/60, सॉल्व करेंगे तो आपको लिखेगा, आपको मिलेगा 1/R eq = 1/10, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम। और ये 10 ओम कहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये R3 R4 और R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब R1 R2 का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला था 8 ओम, R3 R4 R5 का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है 10 ओम, और आपने R1 R2 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 8 ओम को और 10 ओम R3 R4 R5 के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया हुआ है। तो फाइनली आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना होगा उसके लिए आपको 8 + 10 18 ओम लिखना होगा। आपके पूरे सर्किट के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 18 ओम। बी पार्ट में आपसे बोला है टोटल करंट इन द सर्किट फाइंड आउट करना है। टोटल रेजिस्टेंस आपको सर्किट में पता है, टोटल पोटेंशियल आपको पता है सर्किट के अंदर, और आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे सर्किट के अंदर। तो आप लिखेंगे V/R = I, V की जगह लिखेंगे 12, R की जगह लिखेंगे 18, और आपको करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर पता लग जाएगी। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा 12/18 एम्पियर जो है ये करंट फ्लो कर रही है आपके सर्किट के अंदर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको कुछ बातें यहाँ पर जानने की जरूरत है, जैसे कि क्योंकि सीरीज में हम लोग जब लगाते हैं रेजिस्टर्स को तो उससे क्या होता है कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करें कि एक बल्ब को लगा रहे हैं सीरीज में और उसके साथ आप एक हीटर को लगा देते हैं सीरीज में, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हीटर को अलग अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है, बल्ब को अलग अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो सीरीज कनेक्शन है उसके अंदर इस तरीके का कनेक्शन करना कि हीटर को भी लगा दिया है साथ में और उसके साथ सीरीज में लगा दिया है बल्ब को जिसकी करंट की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका सर्किट जो है वो उड़ जाएगा, आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को आपके घरों में पैरेलल कनेक्शन लगाया जाता है। साथ में एक और दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कि आपने बल्ब को लगाया हुआ है, हीटर को लगाया हुआ है, फैन को लगाया हुआ है, हर चीज़ आपने क्या लगाई है सीरीज में लगाई है। अब बल्ब का फ्यूज उड़ गया, तो बल्ब का जैसे ही फ्यूज उड़ जाएगा तो उसका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही बल्ब का सर्किट ब्रेक होगा तो बाकी के जो अप्लायंसेज हैं, हीटर है या फिर बल्ब हीटर है या फिर फैन है या फिर दूसरे अप्लायंसेज जो आपने बल्ब के साथ सीरीज में लगाए थे, अगर बल्ब के अक्रॉस करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा तो बाकी के कंपोनेंट्स के अक्रॉस भी करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे घरों के अंदर जो लगाए जाते हैं कनेक्शंस वो सीरीज में नहीं लगा करके पैरेलल में लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर एक किसी कंपोनेंट का फ्यूज उड़ गया तो उसके अक्रॉस तो करंट जाना बंद हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में लगाए तो एक ही कंपोनेंट के अक्रॉस करंट जाना बंद होगा, बाकी के कंपोनेंट्स में करंट एज इट इज फ्लो करता रहेगा। तो ये बातें आपको समझ आ गई, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चंस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो ये एग्जांपल 12.9 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सेम क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे नहीं एग्जाम के अंदर, लेकिन इस टाइप के आपसे पूछेंगे कि पहले हमने पैरेलल में लगाया है फिर सीरीज कनेक्शन मिल जाता है, या फिर पहले सीरीज में लगाया है बाद में पैरेलल मिल जाता है। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज जो आपने पढ़ा है उसे आपने रिवाइज कर लेना है, कोई डाउट्स हो तो आपको अपने टीचर से जरूर पूछना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।